તારીખ 30/12/1991 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું સોનગઢમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 42
વિશે ચલા આત્મા કા સ્વરૂપ નિશ્ચય કરને મેં જબ અનેક પ્રકાર કી કલ્પના હો જાતી હૈ યાની કે સ્વરૂપ નિશ્ચય જૈસા સ્વરૂપ હૈ વૈસા નહીં હોતા હૈ ઉસી કોઈ કલ્પના કહેતે હૈ ઇસકા કારણ બહોત ગહેરા વિચાર કરકે કૃપાળુ દેવ ને એ વાત સિદ્ધાંતિક રૂપ સે યહાં નિરૂપણ કી હૈ કે જહાં લગી જીવ જહાં તક જીવ લોક સંજ્ઞા મેં વર્તતા હૈ તીવ્ર રૂપ સે વો એકદમ રસમંદ હો જાના ચાહિયે ઓગ સંજ્ઞા મેં વર્તતા હૈ ઉપસંજ્ઞા છૂટને કે લીએ પ્રયોગાત્મક પ્રયાસ ચલના ચાહિયે ઓર એ સત્સંગ કી જિસકો રુચિ હો યાને એ સત્સંગ જિસકો કહે એસે જીવો કી કોઈ અપેક્ષા બુદ્ધિ હો ઉસકે પર પ્રીતિ હો રુચિ હો तो जीव को अपना स्वरूप का यथार्थ निश्चय होने में ये परिणाम बाधक हो जाएंगे। यानी स्वरूप निश्चय करने जाएगा तत्व ज्ञान के अभ्यास कर करके तो कल्पना कर बैठेगा, स्वरूप निश्चय नहीं होगा। तो यहां पर एक प्रश्न है कि कल्पना तो विपर्यास है और तत्वज्ञान का अभ्यास सत्शास्त्रों के निमित्त से करने वाला, सत्शास्त्र में जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप आत्मा का स्वरूप निरूपण किया है वैसा ही बुद्धिपूर्वक कोई विपर्यास नहीं दिखे, बुद्धिपूर्वक आगम अनुकूल उसकी समझ होवे, निर्णय होवे, तो उसको कल्पना कैसे की जाए, तो उसको कल्पना कैसे की जाए, ये प्रश्न यहाँ पर संभवित है। और इसलिए ये प्रश्न विचारणीय है कि हम लोग सत्शास्त्रों के समय सार आदि के माध्यम से आत्मा कैसा है उसका निश्चय करते हैं। ध्रुव क्षेत्र काल भाव से, ध्रुव गुण पर्याय से, उत्पाद गुण ध्रुव से, मैंने तो सैद्धांतिक वैज्ञानिक परिस्थिति है, लेकिन आत्मा मैंने क्या, इधर आत्मा मैंने क्या कि आत्मा मैंने मैं क्या, आत्मा मैंने कोई थर्ड पर्सन नहीं, आत्मा मैंने मैं, तो मैं ऐसा हूं, ऐसा जहां तक अपने आप में लगता नहीं, भाषित होता नहीं, वहां तक भले ही आगम अनुकूल वस्तु का स्वरूप जान लिया हो तो ये कल्पित निश्चय है, क्योंकि अन्य द्रव्य की कल्पना हुई। इसलिए क्या हुआ, इसमें अन्य द्रव्य की कल्पना हुई है, मेरे स्वरूप ज्ञान में नहीं आया, मेरा स्वरूप ऐसा है ऐसा ज्ञान में नहीं आया, इसलिए कल्पना है। हाँ, स्वसन्मुख होने से ही फर्स्ट पर्सन होता है, प्रसंगता में फर्स्ट पर्सन आता नहीं, विकल्प में या भाषा में भले ही व्यक्त होवे कि मेरा आत्मा ऐसा है, मेरा आत्मा ऐसा है, क्या विकल्प और भाषा में मेरा आत्मा ऐसा है ऐसा व्यक्त होने पर भी वास्तव में वो ज्ञान में थर्ड पर्सन रहता है और जीव यहां धोखा खाता है, ये भूल हो जाती है। इसलिए ऐसे कारणों में उदासीन होना और ऐसे कारणों में अगर उदासीन जीव नहीं हुआ, लोक संज्ञा भी पकड़ रखे, ओग संज्ञा की निवृत्ति के लिए प्रयोग नहीं किया, जानकारी सब कर ले प्रयोग नहीं किया और असत्संग भी चालू रखा, इस प्रकार के अपने परिणाम चालू रहे तो ज्ञानी पुरुष के प्रगट आत्मस्वरूप को बताने वाले जो वचन हैं, कहने वाले जो वचन हैं, वो भी उसी कारणों के लिए, उसी कारणों के हिसाब से जीव को अपना स्वरूप का निर्णय करने में ये वचनों का बल नहीं मिलता है। बल नहीं मिलता है मतलब कि असर नहीं आती है, ये हमारे यहाँ व्यापक फरियाद हुई है। फरियाद कहते हैं ना हिंदी में, क्या फरियाद ही कहते हैं, शिकायत, बहुत व्यापक हमारे समाज का ये शिकायत हो गई है कि समझ में तो आता है लेकिन उसकी असर नहीं आती है। क्या उपदेश नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है, करीब करीब बुद्धिजीवी लोग ही हमारे समाज में हैं, तो बुद्धि में बात आती है फिर भी असर नहीं आती है ऐसा कहते हैं। कल इन लोगों ने बताया कि यहाँ तो बैठते हैं तो जरा थोड़ा भी असर लगता है, बम्बई में जाएंगे तो बात ही कोई अलग हो जाएगी। तो मैंने कहा जैसे सब माथे पे भूत सवार हो गया क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है, ऐसे बड़े बड़े सिटियों का माहौल ऐसा होता है कि वहां कोई ऐसा भूत सवार पर हो जाता है दिमाग पर कि फिर ये चीज कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए सत्पुरुषों की आज्ञा है कि मुमुक्षु जीव को तो निरंतर सत्संग में रहना, और निरंतर सत्संग में रहने से क्या है कि समझो कि भाई यहाँ रहना जरूरी है, यानी यहाँ से रहने का छूट नहीं सकेगा, परिस्थिति बस यहाँ रहना पड़ेगा, समझो नहीं रहना हो तो भी। तो कुछ ऐसे पात्र जीवों से सत्संग बनाए रखना, क्या जो आत्मकल्याण करने के लिए तत्पर हुए हो, ऐसी भावना वाले हो, ऐसी जिज्ञासा वाले हो, ऐसी वृत्ति वाले हो, ऐसे लोगों के साथ अपना संग बनाए रखना तो थोड़ा बहुत नुकसान से बचने का संभव है, वरना तो तीन इंच गति के परिणाम चालू है और इसमें जो आयु तो पता नहीं है कितना लेकर के आए हैं, कौन कौन कितना लेकर आए इसका तो कोई पता नहीं है, कभी किसी का आयु पूर्ण हो सकता है। तो ऐसे परिणामों के साथ अगर आयु पूर्ण हो गया तो सिवा तिरिंज गति और तिरिंज गति से परंपराएं और अधोगति अपने बस की बात नहीं रहेगी, परवश पड़े विवश होकर जाना ही होगा और इसका दंड भुगतना ही होगा। जब हमारे सामने ऐसे महापुरुषों की पारमार्थिक परम कल्याणकारक बात सामने आई है, फिर भी हमने उपेक्षा कर ली। हमारे संयोग की संभाल करने में इतने हम तत्पर होंगे कि इसकी उपेक्षा कर ली, दंड भी भुगतना हो। ये कुदरत का न्याय है, कुदरत का हिसाब किताब है, अपने तो समझ करके अपना कार्य करना है। इतने पछे आगे जाए ने एटले समाज ने पाछळ लागी जाए, ज्ञाति ने पाछळ लागी जाए, समाज ने पाछळ लागी जाए, देश ने पाछळ लागी जाए। आज ई बाबत मां बहु डोट डायो छे। हिंदी में शू कहवाय छे खबर नथी, डेढ़ होशियार ओवर वाइज जिसको डेढ़ साला कि अपना तो सुख दुख देखे, लेकिन पत्नी का देखे, पुत्र का देखे, पुत्र का भी देखे। गुरुदेव तो कहते थे, तो बोले ना चाहे बाबू होशियार मानस हूँ रखड़वा मा एम के गुरुदेव शू किए, किसी की होशियारी की बात चले ना, होशियार आदमी मैंने व्यवहार कुशल होते। हमारे भावनगर में एक बहुत अच्छा किस्सा बना, गुरुदेव पधारे थे भावनगर, जिसके मकान में बंगले में ठहरे थे वो बड़ा आदमी था, पैसा वाला, बम्बई में अपना बड़ा कारोबार था, करोड़पति आदमी था। उतना ही नहीं, बहुत दिमाग वाला आदमी था, व्यवहार कुशल जिसको बोलते हैं, कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो गए तो उसको बुलावे कि भाई क्या कहते हैं, इनकी सलाह हम माने। मैंने व्यापार में या कोई परिवार में कोई भी उलझन हो, कोई भी अटपटी परिस्थिति पैदा हुई हो तो उनकी सलाह के मुताबिक लोग चले। इनके सब सर्कल वाले भी वो कहते हैं बहुत साना आदमी है, इनके कहने मानो। तो ऐसे इनके इम्प्रेशन थे, गुरुदेव ने किसी को बताया कि ये सिर्फ पैसा वाला नहीं है, ऐसे दिमाग वाला भी बहुत है, बहुत व्यवहार कुशल आदमी है। मजा भाई शुक्रिया भगवान छिवन। अभी पाइजोनी पर भगवान भवन करके बिल्डिंग है, वो उनका ही आज भी है। वो श्रीमद राजचंद्र जी उसी बिल्डिंग में अपना गद्दे रखा था। एक दफा मुझे ले गए थे कि देखो शशि भाई कृपालु जी ये कमरे में बैठते थे पहले, या दूसरा माला पर है वो कमरा, अभी इनका खुद का बिल्डिंग है। तो वो अकेले थे दोनों, मेरी उपस्थिति वैसे ही कोई कुदरती होगी। तो गुरुदेव और ये वजह भाई दोनों अकेले थे, तो गुरुदेव पर्सनली कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे, वो तो समष्टिगत उपदेश समाज को दे देते थे, कोई व्यक्तिगत किसी को कुछ बात नहीं कहे, कभी भी नहीं कहते वो। लेकिन इनका कोई नसीब अच्छा है, वो तो दोनों बैठे थे, गुरुदेव ऐसे ऊपर बैठे थे, वो नीचे ऐसे बैठे थे, मैं भी आकर बैठ गया, दोनों बैठे थे, मैं भी बगल में बैठ गया। बोले कि बजा भाई मैं सांभळ्युं छे कि तुम्हें बहुत व्यवहार कुशल मानस छो। वो तो क्या बोला, हाथ जोड़ के हंसते रहे। ये देखिए बुद्धि माने तो इसको कहने में आती है, क्या बोले कि जो अपना कल्याण कर ले उसको मनुष्य को मिला है, बार बार ये अवसर नहीं आता है। ये जो परिभ्रमण का चक्कर है अनंत जीवन का, एक वन गोल चलता है, बड़ा साइक्लोन है, सारे विश्व में एक साइक्लोन जैसी बात चलती है, जैसे एक सेकंड के असंख्य भाग में एक समय में अरबों मील अंतर काट लेता है जीव। जैसे यहाँ से आयु पूरा हुआ और देवलोक में गया तो अरबों माइल दूर है, ये जो ज्योतिष के विमान दिखते हैं चंद्र सूर्य तारा, इससे ऊपर जाता है, इसकी तो गिनती है अरबों माइल की, इससे ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो उतना ही नीचे जाता है। उसमें न प्लेन की जरूरत है, न शरीर की जरूरत है, न पांव की जरूरत है, न कोई गाड़ी कार की रेल की जरूरत है, अकेला चला जाता है। कारमण मृगणा साथ में जाती है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। एक कुदरती परिस्थिति पैदा होती है, तो ये कर लेना है, गुरुदेव ने ये बोला कि तुम ये कर लेना है। तो उसका भी उम्र तो हुआ था, अभी बुजुर्ग था, लेकिन बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई आयु का तो किसी का पता नहीं है। तो ऐसी बात है कि जीव को अपने स्वरूप का निश्चय होने में, सत्पुरुष को आत्मस्वरूप को प्रकट बताने वाले वचनों का बल क्यों नहीं मिलता है कि जीव की विभाव परिणति इतनी तगड़ी हो गई है। एक परिणति चलती है रस वाली, तो उससे उसको असर नहीं आती है। बोध की जो असर आनी चाहिए, उपदेश की जो असर आनी चाहिए, वो असर नहीं आती है। इसलिए सत्संग में दीर्घ काल पर्यंत अगर रहना होवे, लंबा काल पर्यंत लंबा रहना होवे, तो कुछ असर आ सकती है। ताकत तो बहुत है पलटा मारने में, पलटा तो कितना भी जोर से मार सकता है, लेकिन ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। सामान्यतया जीव को पलटने में देर लगती है, आहिस्ते आहिस्ते उसका रस बदलता है, वो ठंडा पड़ता है, दूसरा रस आता है। अब ऐसा निश्चय करना चाहिए कि, आगे कहते हैं, पांच नंबर का पोस्टकार्ड है, अब ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है, जिसको आत्मस्वरूप प्रकट है, यह पुरुष के बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूप को यथार्थ कहने योग्य नहीं है। क्या कहा कि जिसने आत्मस्वरूप का अनुभव किया है, प्रकट किया है, मतलब प्रकट अनुभव किया है, वही पुरुष आत्मस्वरूप को बता सकता है, कह सकता है, दूसरा कह नहीं सकता है। क्यों कि जिस विषय में खुद ही अंधेरे में हो, उस विषय को वो कैसे कहेगा, उन्हें कह सकता है। यहां पर एक प्रश्न होता है कि कोई शास्त्र पढ़ करके आत्मा को बता सकता हो है कि नहीं है, शास्त्र अनुकूल प्रवचन करे, या ज्ञानी पुरुष को गुरुदेव को सुना और गुरुदेव ने जैसा आत्मा बताया वैसा समझ में आया और फिर कहे, तो बता सकता है कि नहीं बता सकता है, नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? यही कारण है कि उसने गुरुदेव की वाणी जो निकली, ऐसा किस तरह बोलना, ठीक ऐसा ही बोलना, उसी स्टाइल से बोलना, उसी पद्धति से बोलना, उसी शब्द से बोलना, ऐसे शब्द प्रयोग करना, ऐसा वचन प्रयोग करना, ये सब बात सीखी है। क्या हुआ है? बोलने का सीखा है। तो बोलने का कोई सीखता है और बिना सीखे जो कोई बोलता है, उसमें बहुत अंतर है। क्या ये बोलने का सीखने की बात नहीं है? चीज अपने ज्ञान में हो, अपना स्वरूप अपने ज्ञान में हो और बोले, ये स्वाभाविक तौर से इनकी वाणी निकलती है और पुरवार पर अवरोध होती है, आत्मार्थ उपदेशक होती है और आत्मकल्याण का जो विषय है वो केंद्रित हो जाता है उसमें, हर जगह आत्म कल्याण कैसे हुए वो बात केंद्र में रखकर ही सब बातें चलती है, जिसको आशय कहते हैं। ज्ञानी पुरुष के वचन का आशय कहने में आता है। 1679 में इस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने 3-4 जगह एक ही पत्र में। कृपाल तो कहते हैं कि वो दूसरा कहने योग्य है ही नहीं, ये बात कहने योग्य दूसरा है ही नहीं। वीडियो टेप सुने तो भी उसमें कोई बात नहीं समझ में आवे या कोई अन्यथा समझ में आवे तो क्या करेंगे? टेप तो हमने सुने लेकिन कोई बात समझ में नहीं भी आई, या गुरुदेव कुछ कहते हैं और समझ में कुछ और आया तो क्या करेंगे? टेप उनको कहे बोलेगी कि तुम्हारे में गड़बड़ है। गुरुदेव प्रत्यक्ष होवे और कोई बातचीत चर्चा का प्रसंग होवे तो अपनी भूल सुधर सकती है, और बातचीत नहीं करे तो भी भूल नहीं सुधर सकती है। इसलिए इसके अंतेवास में सतपुरुष के समीप में नजदीक में जाना चाहिए कि बातचीत का प्रसंग बिना हिचकिचाक हम कर सके, हमारे से हो सके। और महापुरुष का सतपुरुष का ये सिद्धांत है कि अगर कोई भी जिज्ञासु हो, भले छोटी उम्र का हो, भले पुण्यहीन हो, मैंने सामान्य दिखता हो समाज में, लेकिन अगर इनकी भावना और जिज्ञासा देखेंगे तो उतना रिस्पॉन्स देंगे उतना रिस्पॉन्स देंगे। गुरुदेव को तो बच्चे को भी रिस्पॉन्स देते थे। ये सतीश भाई नहीं है, सतीश भाई इतने छोटे थे तो ये दिलीप भाई तो खुद ही है। ये तो उदाहरण अपने सामने है। ये सब छोटे छोटे थे, रस लेते थे, अभी धंधे व्यापार में फंस गए। उस वक्त तो पढ़ाई में तो निवृत्ति रहती है, स्टूडेंट लाइफ में काफी गुरुदेव रिस्पॉन्स देते थे। बड़े बड़े आदमी को संबोधन नहीं करे, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी संबोधन करे। तो उसमें ये बहुत कुदरती है ये बात। उस पुरुष से आत्मा को जाने बिना वो दूसरा कहने के योग्य नहीं है, और वह पुरुष से आत्मा जाने बिना दूसरा कोई कल्याण का उपाय नहीं। मतलब यह है कि जिसको आत्मज्ञान करना हो उसको आत्मज्ञानी से ही ज्ञान लेना, दूसरों आपस में मुमुक्षों से चर्चा करना, परिचर्चा करना, ये दूसरी बात है। ऐसा सत्संग कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होने का कोई कारण नहीं बनेगा। ये बात निश्चित है। दिया से दिया जलता है, बिना दिया से कोई दिया नहीं जलता है। वैसे घी वाली रुई की बाट बना के रखो कितने साल तक, स्वतः दिया नहीं जलेगा, लेकिन एक दिया से दूसरा कितना भी दिया जल सकता है। ये एक निमित्त नैमित्तिक विश्व की व्यवस्था है, परिस्थिति है, उसके बाद उन्होंने बताई है। परोक्ष हुए, मैंने प्रत्यक्ष उद्देश्य का बोध ग्रहण किया हो तो बन सकता है परोक्षता में। मैंने जैसे सुभाग भाई थे, तो उनको सम्यक दर्शन हुआ, तब तो श्रीमद जी बगल में नहीं थे, पास में नहीं थे। हाँ प्रत्यक्ष आप चले गया हो तो कोई सवाल नहीं, अगर संस्कार लिया हो या इसको जो कहते हैं वायु लब्धि, वो कहते हैं देशना लब्धि मिल चुकी हो, प्रत्यक्ष सत्पुरुष के से देशना लब्धि मिल चुकी हो तो परोक्षता में भी अनुभव हो सकता है, तो नहीं। हाँ, या मिली हो फिर भी ऐसे परिणाम किया हो विपरीत, पर देशना लब्धि की योग्यता चली गई हो, लब्धि मैंने प्राप्ति आती है जाती है, अनंत बार चार लब्धि मिली है, इसका मतलब क्या हुआ कि देशना लब्धि आई भी है और गई भी है, तो आई हो ऐसी योग्यता में काम हो सकता है, और आई फिर चले जाए ऐसा परिणाम में आवे तो फिर काम नहीं बनने वाला। चालू करना पड़े तो हम व्यापार करते हैं, पैसा खो दिया तो फिर शुरू से खो गया, मैंने गया नुकसान में नफा थोड़ा है। संस्कारी पुरुष ने पुरुषार्थ गुरु वगैरह उपड़ी सके, संस्कारित एटले शुं के जेने पूर्वमां આત્માના સંસ્કાર ઝીલ્યા હોય એને એને દેશના લબ્ધિ જતી નથી, દૂસરા ભેદ ચાલો, દેશના લબ્ધિ જાતી ભી હૈ ઓર નહીં ભી જાતી હૈ, જિસને સંસ્કાર પા લિયા, મેને સ્વરૂપ નિશ્ચય તક આ ગયા, યા તીવ્ર રુચિ મેં સંસ્કાર પડ ગયા, દો જગહ તીવ્ર રુચિ હોતી હૈ, એક સ્વરૂપ નિશ્ચય કે સ્ટેજ મેં ઓર ઇસકે પહેલે કે સ્ટેજ મેં બહુત તીવ્ર રુચિ હોવે, તો તીવ્ર રુચિ કે કાલ મેં અગર સંસ્કાર જમ ગયા તો એ એવર લાસ્ટિંગ ચીજ હૈ, તો કભી ખતમ નહીં હોતી, તો નિર્મૂળ હોઈ નહીં સકતા, સંસ્કાર કભી નિર્મૂળ નહીં હો સકતા, દૂસરે ભાવ મેં તીસરે ભાવ મેં લે લેગા પ્રાપ્ત કર લેગા, એ સત્પુરુષ કા પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ કા સત્સંગ કા કિતના બડા ફાયદા હૈ, ઇસકા મૂલ્ય કિતના બડા હૈ દેખીએ, કે અગર સંસ્કાર હો ગયા તો ભી ઓ નિર્વાણ પદ ઇસકા સિક્યોર હો ગયા, સુરક્ષિત હો ગયા, આરક્ષિત હો ગયા, રિઝર્વ નિર્વાણ પદ, સમ્યક દર્શન નહીં, યે બાત હૈ, ઇસકા મોક્ષ ફાઇનલ હો ગયા, બહોત સમીપ મેં, ફાઇનલ હો ગયા મતલબ બહોત સમીપ મેં, બહોત નજદીક મેં, તો યે બાત એસી હૈ। देश उपदेश ग्रहण करने के योग्यता हुए और कुछ उपदेश भी ग्रहण करे के जिसके दौरान वो आगे बढ़ सके, उपदेश की असर आती है आत्मा पर, दर्शन में हो कि मंदता का कोई प्रकार बनता है, उसमें जीव को आत्मकल्याण की भावना होती है, उसमें उनका दर्शन में मंद होता है और वो उपदेश ग्रहण करने के लायक बनता है, तो देशना लब्धि मिलती है, फिर भी आगे बढ़ना चाहिए, तीव्र रुचि हुए तो संस्कार पड़े, संस्कार पड़े इसके पहले भी अगर स्वरूप निश्चय हुए तो संस्कार पड़ जाए, अब पुरुषार्थ जागृत हो जाए, स्वरूप सम्मुक्ता का स्वसम्मुक्ता का पुरुषार्थ जागृत हो जाए तो अनुभव तक पहुंचा जाए, समय प्रश्न तक आ जाए। કેટલી રુચિમાં ઉભો રહીને એટલે એનો આધાર એની એ વખતની રુચિની ડિગ્રી સાથે સંબંધ ધરાવે છે, રુચિ જરૂરત સાથે સંબંધ ધરાવે છે, એકદમ જરૂરતમાં ઉભો છે ને મળે છે તો કંઈક પકડે છે, જો આ આવ્યા હમણાં તમને સંભાઈ રહ્યા હતા, આ ગુરુબેન નાના છોકરાઓને બહુ યાદ કરતા હતા, અમે એક આ તમારો નંબર નહીં દિલીપભાઈનો નંબર બેનો નંબર છે, અમે તો બધા મોટી ઉંમરે આવ્યા મોડા પડેલા, સમજ્યા, અમે લોકો મોડા પડેલા ગુરુદેવ પાસે, બે ને ત્રણ અક્ષર વાળું નામ છે, છત્તીસ ને દિલ્હી. તીવ્ર રુચિ અવ્યક્તપણે પણ એવી કોઈ યોગ્યતા જે આવે છે, તમને ખુદ નહીં જાણતા. આત્મ સ્વરૂપ કા નિરૂપણ આવે, સ્વભાવ કા નિરૂપણ આવે, ઇતના રુચે ઉતના રુચે જીવ કો ઉતના રુચે, એકદમ તીવ્ર રુચિ મેં ઉનકો સંસ્કાર ડલ જાતા હૈ, કભી પડ જાતા હૈ. યા તો સ્વરૂપ નિશ્ચય કરે ઉસ વક્ત તીવ્ર રુચિ પેદા હો જાતી હૈ. એક તો ગુણ કી રુચિ થી જીવ કો, इसमें अनंत गुण का निधान खुद में देखा तो रुचि उमड़ पड़ी, एकदम अंदर से उछल करके आ निकली, उसमें डिग्री बढ़ जाती है. तो उस वक्त संस्कार नियम रूप से पड़ता है, दो स्टेज में पड़ता है, एक खुद जानता है एक खुद नहीं जानता है. अभी अब तो रुचि में खुद को पता ही नहीं होता कि संस्कार पड़ गया है या जीव को नहीं पड़ा है, लेकिन स्वरूप सम्मुखता में तो बराबर पता चलता है. સ્વરૂપ સંમુક્તા વાળે કો તો સંસ્કાર કા હિસાબ ભી નહીં. સુનતે હૈ તો સબ ક્યોંકિ કાન પે કોઈ ઢક્કન નહીં, આંખ પે હૈ લેકિન કાન કો ઢક્કન નહીં હૈ, પર્દા નહીં હૈ, યે તો ખુલા હી રહેતા હૈ હમેશા. ઇસલિયે બાત તો સુનાઈ દેતી હૈ સબો કો, સુનના એક બાત હૈ, ગ્રહણ કરના દૂસરી બાત હૈ. ગ્રહણ કરને મેં ભી દો પ્રકાર હૈ, એક સૂક્ષ્મ મેં ગ્રેસ્પિંગ હોતા હૈ, પકડ આતી હૈ કે યે એસા કહેના ચાહતે હૈ, એસા કહેના ચાહતે હૈ, એસા ન્યાય હૈ, વો બાત હૈ, વો બાત હૈ, વો બાત હૈ. જૈસે કે ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો હોતા હૈ, એક તો ઇસ પ્રકાર કો ભી ગ્રહણ કિયા એસા બોલને મેં આતા હૈ, પર દૂસરા અપને લિયે સ્વ લક્ષ્ય સે ગ્રહણ કરતા હૈ, તો ઉસમે થોડા બાયફર્કેશન યે હોતા હૈ. જો અપને કામ કી બાત હૈ ઉસકો જમાતા જાતા હૈ, અપને મેં જમાતા હૈ, અપને મેં લાગુ કરતા હૈ. પર જો અપને કો લાગુ નહીં હોતી હૈ, ઇસ બાત કો ફાલતુ સમજ કર નિગ્લેક્ટ કર દે, ઉદાસીન હો જાતા હૈ, ઉસ પર ધ્યાન નહીં દેતા, લક્ષ્ય નહીં દેતા. ઇસ એ દો પ્રકાર સે સુનને કા હોતા હૈ. યે દૂસરા પ્રકાર ઠીક હૈ, પહેલે વાલા ઠીક નહીં હૈ, યે નુકસાન કા કારણ હૈ. ઠીક તો નહીં હૈ, સત્પુરુષ કે કમરે મેં ચીટિયા ભી રહેતી હૈ, મક્ખિયા ભી આતી હૈ, ઉનકે સર પર ભી બેઠ સકતી હૈ મક્ખી. તો ક્ષેત્ર સે ક્યા મતલબ હૈ. ऐसा कोई बात नहीं है, भाव से समीपता होवे तो दूसरी बात है. भाव से समीपता होगी तो क्या होगा कि क्षेत्र से वियोग हो जाएगा लेकिन परिणाम वहां लगते रहेंगे कि मेरा परमात्मा वहां विराजता है. क्या मेरा परमात्मा वहां विराजता है ऐसा लक्ष्य वहां ही रहेगा उनका. आता है कि नहीं ध्रुव दृष्टि प्रकाश के पत्रों में, शायद कोई दिन ऐसा गुजरता है कि वहां की स्मृतियां बार बार नहीं आती हो. लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी 1500 किलोमीटर दूर है कलकत्ता सोनगढ़, पूर्व पश्चिम है बिल्कुल इंडिया का, और इधर आए बहुत, इधर तो परिणति भी तीव्र हो जावे. तो एक दिन शाम को हम गए खाना खाने के बाद, अकेले बैठे थे, मैंने कहा चलो गुरुदेव के पास चले. वही बाहर लॉबी में बैठते हैं, पाद पर बैठेंगे साथ में. उनको तो अपने ध्यान में बैठने का टाइम था, समय था. तो बोले कि आप जाइए. क्या क्षेत्र से नजदीक जाने का मोह नहीं था उतना? भाव से नजदीक थे इसलिए क्षेत्र से इस तरह से नजदीक जाने का मोह नहीं था जो सामान्य मुमुक्षुओं को होता है. बोला कि आप जाइए, मैंने तो गुरुदेव को यहाँ बिठा लिया है, बिठा लिया है, ऐसा किया, चेष्टा भी ऐसा किया। ये बात मेरे साथ हुई है जो दूरदृष्टि प्रकाश में है ना, हाँ वो काफी। तो ये अलग बात है, भाव की बात अलग होती है, नहीं आता है। श्रीमद जी ने कई पत्रों में मन महिला नो वाला उपरे बीजा काम करंतरे तेम सूत धर्म में मन दृढ़ रहे ज्ञान क्षेत्र अभिमंत्र। भाई घर में रसोई करती है, पानी भरती है, कपड़ा धोती है, सब कुछ काम करती है, उसका चित्त कहाँ है? उसका पति पर उसका चित्त रहता है। तो ऐसा जो है मुमुक्षु के हृदय में जो प्रगट सत पुरुष का जो भाव है वो उसी तरह रहता है, भले क्षेत्र से दूर हो नजदीक हो, दूर हो तो और तीव्र हो जाता है, नजदीक में और फिर तीव्र हो जाता है। ये तो एक सवाली भक्ति का ऐसा होता है कि जो हमेशा बढ़ता रहता है, भक्ति तो बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती।
सब पुरुष से दूर जाते हैं जब क्षेत्र से, तो बार बार सत्पुरुष का स्मरण आता है तो स्वसंमुक्तता चुकता है कि स्वसंमुक्तता का कारण बनता है
परितु।
क्षेत्र से सत्पुरुष से दूर जाता है और चित्त सत्पुरुष में लग जाता है कि मेरा वियोग होगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है, पर वास्तव में तो मार्ग तो स्वसंमुक्तता का है, तो वो वियोग जो बार बार स्मरण आता है वो उसका कारण में है, स्वसंमुक्तता को उत्पन्न करता है कि क्या करता है?
दर्शन को मंद करता है। सत्पुरुष के प्रति भक्ति की डिग्री बढ़ती है तो सत के प्रति उसका भाव बढ़ा ना, भक्ति भाव किसके प्रति बढ़ा? सत के प्रति। सत्पुरुष मैंने एक प्रकट सत है वो, तो सत के प्रति जिसका भाव बढ़ा उसमें दर्शन का गलना निमित्त नहीं कुछ दिक्कत से बनता है, ऐसा है। तो दर्शन मोह का गलना बनता है तो दर्शन मोह अधिक मंद होने से, इसका अनुभाग टूटने से ही ज्ञान में निर्मलता आकर के स्वरूप का निश्चय होकर के सन्मुखता आ जाती है ऐसा है, सब किताब की तरह से ऐसा हिसाब है। इसलिए सरत पुरुष की अत्यंत भक्ति, अत्यंत भक्ति, अत्यंत भक्ति का जो बात लिया है उसमें ये हिसाब किताब की बात है, राग करने की बात नहीं है राग करने की बात नहीं है। हाँ, रहस्य भक्ति कहते हैं वो, क्या बोलते हैं, भक्ति के बहुत प्रकार लिए, प्रेम भक्ति, रहस्य भक्ति, अच्छा अलग अलग भोग भक्ति, पराभक्ति, वो बहुत प्रकार का विशेषण लगाते हैं वो अलग अलग जगह, रहस्य भक्ति में जाता है भक्ति का ये रहस्य है, ऐसी बात है। मैंने बहुत सुगम उपाय दिखाया, उस पुरुष से आत्मा जाने बिना आत्मा जान लिया है ऐसी कल्पना मुमुक्षु जीव को सर्वथा त्याग करने योग्य है। क्या सत्पुरुष से आत्मा जाना, वास्तव में जाना मैंने, प्रतिभास हुआ या अनुभव हुआ तो समझना का आत्मा जाना, वरना आत्मा जाना है वो कल्पना छोड़ देना, कभी कल्पना में नहीं आना, कल्पना होने से घृत मिथ्यात्म आ जाएगा, बुद्धिपूर्वक किया है इसलिए घृत मिथ्यात्म आ जाएगा। और वह आत्मा रूप पुरुष, अब क्या कहते हैं सत्पुरुष को, क्या कैसा शब्द में लिया, वो आत्मा रूप पुरुष का सत्संग की निरंतर कामना रख करके उदासीन पने लोक धर्म संबंधी और कर्म संबंधी परिणाम से जिस तरह छूट सके उसी तरह व्यवहार करना। क्या कि वियोग में क्या होना है कि सत्संग की निरंतर कामना, एक तो कि मेरा परमात्मा वहां विराजता है उसके उसके संग में मुझे जाना है। सोगानी जी तो तीव्र पुरुषार्थी थे, लंबा चौड़े समझाने की आज जरूरत नहीं है, इनके वचन पर्याप्त है कि कितना जोर था इनके परिणमन में वचनामृत में आई। फिर भी सत्संग के लिए तो वो रोते थे, खुद के परमात्मा का वियोग था तो वो रोते थे, आंसू निकल जाते थे। तो ये इनकी कामना बताते हैं, सत्संग की निरंतर कामना। मुमुक्षु को तो कितना होना चाहिए, ज्ञानी को उतना होता है। ज्ञानी को इतना हुआ तो मुमुक्षु को कितना होना, उनके पास तो पूंजी है, ताकत है, फिर भी इतना होता था। तो उतना कामना रख करके दासीन रूप से फिर क्या, फिर तो व्यवहारिक कार्य करना पड़ेगा या कर्म का उदय भी आएगा। तो उदासीन रूप से लोक धर्म संबंधी, मैंने लोक व्यवहार संबंधी और कर्म संबंधी, कर्म के उदय उसमें भी उदय तो है भी, वहां भी कर्म संबंधी परिणाम जो भी हुए उससे मैं कैसे छूट सकूं, इस इसका निषेध पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार कार्य में जीव को अपनी महत्ता आदि की इच्छा हो, यह व्यवहार करना योग्य नहीं है। और जिस व्यवहार में अपनी बड़ाई, अपनी महत्ता ऐसी कोई इच्छा आ जाए तो ये व्यवहार तो करना ही नहीं, ऐसा व्यवहार को नहीं करना। ये व्यवहारिक कार्य में कैसे परिणाम रखना चाहिए इसका मार्गदर्शन है। ये 5 नंबर का पोस्ट कार्ड पूरा हुआ। 6 नंबर में आप कहते हैं कि हमारे समागम को हाल अंतराय जान करके, मैंने आजकल हम आपको प्रत्यक्ष मिल सकने में वो परिस्थिति नहीं है, वो मुंबई से लिखते हैं तो अपने कारोबार में वो रुके हुए हैं। हमारे समागम को हाल अंतराय जान करके निराशता को प्राप्त होना, निराशता को प्राप्त होना निराशता को प्राप्ति होनी होनी घटित है, मैंने हो सकती है, होती है। आप जानते हैं कि हमारा समागम नहीं मिलता है तो आपको निराशा भी आती है। तथापि उखंबात के मुमुक्ष है ना, उनको लिख रहे हैं, तथापि ऐसे ऐसा होने में, ऐसे करने में ईश्वर इच्छा जान करके, ईश्वर इच्छा मैंने क्या, कोई ईश्वर इच्छा करता है क्या, कुदरत, ईश्वर मैंने यहाँ कुदरत, कुदरती समागम की परिस्थिति नहीं है, क्योंकि ये तो संयोग वियोग होना ये कुदरताधीन है, स्ववश नहीं है, ये परवश है। इसलिए ईश्वर इच्छा जान करके समागम की कामना रख करके जितना परस्पर मुमुक्षु भाइयों का समागम हो सके, देखिए क्या क्या मार्गदर्शन दिया है कि मेरा समागम नहीं मिलता है तो आप जो मुमुक्षु लोग हैं वो आपस में मिल करके सत्संग करना, आपको करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं मिलता तो सत्संग नहीं करे और लग जावे अपने सांसारिक कार्यों में, ऐसा नहीं होना। सत्संग तो आपस में अवश्य रखना। ऐसा जान करके परस्पर मुमुक्षु भाइयों को समागम बने उतना करना, जो हो सके उतना ज्यादा करना, करना मतलब हो सके उतना ज्यादा करना, जितना हो सके उतना प्रवृत्ति में से विरक्तपना रखना। तो विरक्तपने में रस कम कर देना, प्रवृत्ति करने के समय भी हो सके इतना प्रवृत्ति में रस कम कर देना, ये रस मारेगा। आत्मरस उत्पन्न होने में कौन मारता है, कौन रोकता है, कि विपरीत रस है जो प्रवृत्ति का रस है यही नुकसान कर रहा है।
प्रवृत्ति में से रस होने की चाबी नहीं है, प्रवृत्ति में दस कम होने की चाबी दी है।
चाबी तो दी है लेकिन ली नहीं है। नुकसान होता है ये उतना ग्रहण हो जाए कि जहां जहां जिस जिस प्रवृत्ति में मेरा रस बढ़ेगा मेरे आत्मा को बहुत बड़ा आवरण है। चाहे एक सामान्य खाने की बात हो, ये तो डेली रूटीन की बात है ना, हमेशा होती है खाना खाने, 12 बजे खाना खाने को बैठा आज शाम को खाना खाने को बैठा, ये तो रोजिंदा डेली रूटीन का काम है। छोटा मोटा रूटीन वर्क हो या कुछ दूसरा उदय हो, कुछ भी प्रकार का उदय हो, ब्रह्मेश का उदय हो या नया उदय हो, कोई भी हो, कहीं भी रस तीव्र नहीं हो ये जागृति, नुकसान मालूम पड़ेगा तब ही आएगी। दो प्रकार से आती है ये, नुकसान है नास्तिका में से, जिसको नुकसान का पता नहीं है उसको अस्ति का ग्रहण होने का तो सवाल ही नहीं। पर एक तो जो मैं मात्र ज्ञाता हूं, ज्ञान मात्र हूं, ऐसी जो जागृति आती है तो ये चाबी तो मास्टर की है। क्या ज्ञान मात्र हूं, मैं तो मात्र ज्ञान हूं, उतना जो सावधानी आ जावे, जागृति आ जावे, तो ये तो मास्टर की है। ये तो रस उसी वक्त टूटेगा, पैदा होते ही टूटने लगेगा, चालू परिणति में, चालू परिणाम में टूटने लगेगा। ये तो रामबाण इलाज है, निष्फल कभी नहीं होता। लेकिन ये बात रही थोड़ी बहुत अंतर अभ्यास की, भय से भी घटे तो भी ठीक है कि बहुत बड़ा नुकसान है मेरे आत्मा को, ये बहुत बड़ा नुकसान है। जहां भी रस बढ़े मेरे आत्मा को बहुत बड़ा नुकसान है, तो रस थोड़ा डिग्री उसका नीचे आ जाएगा। जितना हो सके उतना प्रवृत्ति में से विरक्तपना रखना, मैंने रक्त मैंने रस, विरक्त मैंने कम रस, या रस को अभाव करना, मंद रस। तथापि विरक्त रखना सत्पुरुष के चरित्रों और मार्गानुसारी जीवों का वचनों, मार्गानुसारी जीवों में उन लोगों को जो उस वक्त दिखाए थे, जिसका सुंदरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि ऐसा नाम क्रॉस में ब्रैकेट में लिया है, ये मार्गानुसारी पुरुषों के वचनों हैं। उन लोगों के वचनों या कोई सत्पुरुष के वचनों या इसके चरित्रों, ऐसे जीवों का वचनों, और जिसका उद्देश्य आत्मा को मुख्य कहने के लिए है, ऐसे ग्रंथ के परिचय रखना। वो ग्रंथ का भी नाम दिया है ब्रैकेट में, विचार सागर, सुंदरदास का ग्रंथ, आनंद गंजी, बनारसीदास, कबीर, अखा वगैरह का पद, इन लोगों के पद, ऐसे ग्रंथ का परिचय रखना।
जैन धर्म की भावना अन्य व्यक्तियों ने याद करी ने जे कर्म
कुछ गंभीरता सरस। ये प्रश्न यहाँ होने योग्य है कि जो जैन संप्रदाय में नहीं है और अन्य संप्रदाय में अभी है, इनके वचनों को मुमुक्षुओं को क्यों पढ़ना, ये थोड़ा हमारी विचारधारा से, जो मैं हमारी अभी सांप्रदायिक विचारधारा से, हमारी मैंने हमारे सांप्रदायिक विचारधारा से अनुचित लगता है। लेकिन श्रीमद जी बहुत गहरे ज्ञान वाले धनी थे, गहरे ज्ञान के धनी थे, मामूली ज्ञान नहीं था उनके पास, बहुत गहरे थे अपने विषय में, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्ट थे उतना नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने बहुत गहराई से ये सब चीजें देखी हैं, जिसका जिसका नाम दिया है उन लोगों ने के विषय में उनका उपयोग बहुत गहरा गया है। अब पढ़ते वक्त इसकी प्रतीति हो तो उनके ज्ञान की प्रतीति आएगी जिसने ये बात सिखाई है कि तुम ये पढ़ो। क्या मार्गानुसार होते हैं, अन्य मत में भी, अन्य मत में भी मार्गानुसार होते हैं, और सामान्य जो हम लोग मुमुक्ष हैं इससे वो आगे के योग्यता वाले हैं, इससे कुछ अधिक योग्यता वाले हैं, ऐसी बात है। ये विषय हमारे यहाँ नहीं चलता है, लेकिन बात ऐसी ही है इसलिए वो बात भी है। पर जब जब ऐसी बात आवे कि जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती हो, तब सत्पुरुष के वचनों का निषेध कभी नहीं करना, भूल से भी नहीं करना, जानबूझकर तो नहीं करना लेकिन भूल से भी नहीं करना। क्यों? कि आत्मकल्याण के विषय में ये हमारे से बहुत बहुत आगे है। कितने? बहुत बहुत आगे है, वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, ये कंपैरिजन करने का सवाल ही भी नहीं है कि हम बराबरी करें कुछ, क्योंकि क्वालिटी डिफरेंस है। बराबरी तो सेम क्वालिटी हो उसमें हो सकती है ना ये तो क्वालिटी डिफरेंस है, उसमें बराबरी नहीं हो सकती। तो पहले तो मान्य कर लेना है, फिर इसकी गहराई में जाना, वो जहां तक समाधान नहीं हुए वहां तक। फायदा ये होगा कि हमारी जो संप्रदाय बुद्धि जो हमको प्रतिबंधक है आत्मकल्याण में, वो छूट जाएगी। ये फायदा होने वाला है यहाँ से। ये संप्रदाय बुद्धि क्या चीज है लोगों को पता नहीं है। हम कांजी स्वामी वाले वो संप्रदाय बुद्धि है क्या? वो संप्रदाय बुद्धि है। हमें श्रीमद वाले में नहीं जाना चाहिए। क्या क्या कहते हैं हमारे यहाँ कि हम लोगों को श्रीमद वाले में नहीं जाना। तो श्रीमद वाले क्या कहते हैं? हमको कांजी स्वामी वाले में नहीं जाना चाहिए, वो भी संप्रदाय बुद्धि है। हमारे में और उनमें कुछ फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, एक ही वर्ग के लोग हैं दोनों। मार्गानुसारी अन्य मत में भी होते हैं, वे कोई ऐसी गहरी योग्यता की चीज है कि जिसको सत्पुरुष ही पहचान सकता है। सामान्य मुमुक्षु का कोई गुता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है को पहचान सके। उसको सन्मार्ग में प्रवेश करने में जितनी देर नहीं लगेगी उतनी ये कहलाने वाले मुमुक्ष को देर लगेगी, ये बात है इतने वो नजदीक है जब ही इनका नाम लिया है। हमारा आपका नहीं लिया इसका यही कारण है कि हमारे से आगे थे, ऐसी बात। तो सत्पुरुष का वचन का तो परिचय करना, लेकिन ऐसे लोगों का वचनों का भी परिचय करना, भले ही वो अभी सत्पुरुष नहीं है लेकिन ये होने वाले सत्पुरुष हैं। सत्पुरुष की जो परिस्थिति है इसके समीप आए हुए हैं, भले आज अन्य मत में है। अभी देखिए एक बहुत जीवंत दृष्टांत है इस विषय में कि सौभाग्य भाई जब मिले ना तो बहुत एक विचित्र परिस्थिति में मिले हैं। बहुत गहराई से अगर इनका अभ्यास करते हैं तो कि श्रीमद जी के प्रति उनको इतनी भक्ति कि जैसे कोई परमेश्वर मिल गया उसको साक्षात, और दूसरी ओर इनके श्रद्धा वेदांत के उनको कुसंग था। एक डूंगर भाई करके जो इनके साथ था वो वेदांती थे, वेदांत है तो स्थानक वासी थे लेकिन वेदांत और चमत्कार के प्रति उनकी श्रद्धा जमी हुई थी, और इसके संग से उनको भी ऐसी बातों में रस आता था, उसके ऊपर प्रीति आती थी, उसका संग करते थे वो, तो उनके भी श्रद्धा में इस प्रकार का एक दोष था जिसको हम ग्रहित मिथ्यात्व कह सकते हैं। फिर भी एक विचित्रता ये पैदा हो गई कि वो कोई सत्पुरुष को खोजते थे, इतनी श्रद्धा नहीं थी कि उनको सत्पुरुष मान लेते थे, लेकिन श्रद्धा में झुकाव था थोड़ा, हाँ मैंने सॉफ्ट कॉर्नर अनुमोदना हो जावे उनके, और उसका कुछ रिगार्ड भी कि नहीं, कुछ ठीक कहते हैं, कुछ ठीक कहते हैं, कुछ ऐसा जानकार आदमी है, कुछ ठीक बताता है, ऐसा उनको थोड़ा रहता है। श्रीमद जी मिले तो उनको प्रतीति आ गई, कि कोई सत्पुरुष है, वाकई ही कोई सत्पुरुष है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये डूंगर भाई ने काफी आर्गुमेंट किया है कि सत्पुरुष है तो उसके पास चमत्कार क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ऐसी बहुत चर्चाएं चली है आपस में। तो उसका भी जवाब संकेत रूप में दिया है, तो हिस्ट्री जानते उसको तो पता चल जावे कि वो क्या जवाब दिया इधर, अरे एक दो वचन लिखा। लेकिन उसकी सत्पुरुष पर जो श्रद्धा थी वो बहुत जमी हुई, बहुत अडग थी। तो ये डूंगर भाई के प्रति की जो श्रद्धा है वो कम होती गई, पर डूंगर भाई को सौभाग भाई वाली श्रद्धा हुई वो जमती गई। संघ में क्या हुआ कि मेजर फोर्स है वो इफेक्ट करता है, बाजार में क्या होता है, बहुत कारण होता है तेजी मंदी का, मेजर फोर्स आता है इफेक्ट कर रहे थे, कारण तो बहुत होते हैं। तो दोनों में जो मेजर था, पहले वो गोसलिया डूंगर भाई मेजर था, अभी सौभाग भाई मेजर हो गया, मजबूत था ना इसलिए, बलवान था वो। इस सत्पुरुष का संघ का क्या फल होता है, तो उनको ऐसा लगा कि बस इनको नहीं छोड़ना है, ये इनको पकड़ा है, उनको विश्वास कहाँ से आया, वो बीज ज्ञान वाली बात से विश्वास आ गया, क्योंकि बीज ज्ञान का उकल डूंगर भाई ने कभी नहीं दिया, श्रीमद जी ने दे दिया। तो उसकी श्रद्धा वहां से हटते गई और बहुत ढलते गए श्रीमद जी के प्रति, बहुत ढलते गए, बहुत ढलते गए, उतने ढले के वो सम्यक दर्शन तक पहुंचे, उतने ढले। मार्गानी पुरुष यानी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उतनी भी योग्यता इस वक्त नहीं थी। अच्छा। मार्गानुस्वारी तो उससे भी आगे होते हैं जिसका नाम लिया वो तो सुभाग भाई थे, उससे भी आगे होते थे, आगे होते हैं योग्यता ऐसे, बहुत थोड़ी गहरी चीज है, इसलिए इनका नाम लिखा है, थोड़ा विचार करने की चीज है। मुमुक्षों से आगे हैं, इसलिए अपने मुमुक्षों को वो कहते हैं कि तुम इनका वचन भी पढ़ो, सिर्फ मेरा ही पढ़ो नहीं, वो तो प्रत्यक्ष थे लेकिन इनके भी देते हैं, ये एक विशिष्ट बात है। आज भी मिल सकती है, मिल सकती है,
चाहे ऐसे सैद्धांतिक ना समझ के बावजूद उनके वचनों में कोई ऐसी योग्यता झलकती है मुमुक्षों के लिए भी विकार।
अच्छा, ज्ञानी से सैद्धांतिक भूल नहीं होती है क्या? लेकिन उनकी भूल जो है वो क्षोभ के कारण से, अगर इनको कोई सत्पुरुष मिल जाता तो उतना तेजी से वो मार्ग को पकड़ लेता कि हम सब लोग सारे आश्चर्य में डूब जाते हैं, ये बात है। उनको भी जो अटक है वो उस क्षोभ वाली भूल है, और कुछ नहीं है, क्षोभ को भी तो ज्ञानी को भी हो सकती
है।
जैसे सौभाग भाई को सम्यक दर्शन हुआ ना, तो बोले कि अभी केवल ज्ञान अभी लूंगा मैं, क्या मिले थे को पता था कि मैं तो ग्रस्त हूँ, मुनिपणा लिया नहीं है, आया नहीं है, फिर भी केवल ज्ञान की बात करने लग गए थे, अनुभव होते ही केवल ज्ञान की बात करने लग गए थे, और दूसरे महात्मा भी ऐसे केवल ज्ञान की बात करने लग गए थे ये सैद्धांतिक भूल होती है, वो कोई श्रद्धा में कोई नुकसान नहीं करती, तो निकल जाता है सूक्ष्म का जो दोष है वो निकल जाता है, वो तो बहुत उनको रुकने में कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई खास बात नहीं है।
सोगाणी जी जब यहाँ फर्स्ट टाइम पधारे, वो टाइम की जो उनकी दशा थी, होते से प्रवचन सुनने के पहले और मार्गानुसार ये जो पुरुष होते हैं उसके परिणाम जो होते हैं उसमें क्या अंतर है?
तो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता विशेष होती है। सुगानी जी की योग्यता तो टॉप लेवल की थी। क्या वो मार्गानुसार जैसे वचन भी नहीं निकालते लेकिन योग्यता कोई टॉप लेवल की थी। इसका कोई प्रकार विलक्षण है, इससे कोई विलक्षण है मैंने इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार बहुत है। इतना टॉप लेवल तो बहुत रेयर केस में होता है, ज्ञानियों में भी रेयर केस में। मैंने हजारों ज्ञानियों हुए होंगे इतनी तेजी से किसी ने मार्ग को पकड़ा हो ये तो कोई दृष्टान नहीं मिलता है आजकल तो। ऐसी बात है कि सत्पुरुष मिले तो भी सालों निकल जाती है। कितने सत्पुरुष मिलने के बाद भी महीना नहीं निकलते, दिनों नहीं निकलते, सालों निकल जाती है। उसको घंटा निकला है, दिनों नहीं निकला है, कोई मामूली बात नहीं है।
हमारे संप्रदाय में जब ज्ञानियों के वचन मिलते हैं फिर अपने को ऐसा क्या जरूरत है कि अपने कोई मार्गानुसार
हाँ उसका तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। गनीमत में थे नहीं, वो तो मूल दिगंबर थे, फिर इनके लिए मार्गानुसार का कंपेरिजन कैसे करे? वो तो पूर्व कर्म में भी उतनी बाधा लेकर नहीं आए थे कि जो अन्य मत में उसको जन्म लेना हो, उतना भी विपर्यास लेके तो नहीं आए थे, तो उनका तो इनके साथ बराबरी भी कैसे करें?
नहीं लेकिन स्वरूप निश्चय होने के पहले तो दोनों बराबर ही होते
हैं। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं उसमें बहुत प्रकार अंतर है। अन्य मत में जाना पड़ता है, वो कोई फालतू नहीं गया है, वो भी कुछ ऐसा विपरीत परिणाम करके जाता है जी। अन्य मत में गए तो भी विपरीत परिणाम करके गए। देखिए वो भी गुरुदेव का दृष्टांत लेते हैं, बहुत अच्छा दृष्टांत है कि वहां तो कोई अन्य मत था नहीं महाविद्य में, अच्छा, और यहाँ अन्य मत में आए और संस्कार लेके भी आए। अभी देखो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कैसी है कि संस्कार भी लिया और अन्य मत में जन्म भी लिया, दो बात साथ में लेके आया इधर, कैसी विचित्र बात है ये। गृहित लेके आए ना, गृहित मिथ्या लेके आए ना, और संस्कार भी लेके आए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं, परस्पर विरुद्ध बातें हैं कि नहीं? तो ये एक बहुत गहरा विषय है, मामूली विषय नहीं है, बहुत गहरा विषय है कि हमको ऊपर ऊपर से देखे तो विरुद्ध परिस्थिति दिखे और हम हिसाब किताब लगावे तो हमारा हिसाब किताब काम में नहीं आवे, ऐसा बनता है। इसलिए ऐसी बातों में